ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है निमित्त निर्माण और निर्मल। बाप दादा करावनहार है, हम सब निमित्त हैं। जो भी जहां भी है, जिस सेवा के निमित्त है, उनको यदि निमित्त भाव रहेगा, अभिमान नहीं आएगा। और जिम्मेवारी का बोझ नहीं लगेगा। आप परिवार में रहते हैं, समझो बाबा ने हमें निमित्त बनाया है परिवार को चलाने का। मेरा परिवार है, मैं उनको संभाल रहा हूं, मैं उनको चला रहा हूं, मैं उनको खिला रहा हूं, मैं उनकी पालना कर रहा हूं। यदि ये स्मृति रहती है तो नेचुरली भारी हो जाते हैं, जिम्मेवारी का बोझा हो जाता है। परंतु बाबा के बच्चे हैं, मैं निमित्त हूं, ट्रस्टी हूं, गृहस्थी नहीं ट्रस्टी हूं। इस स्मृति से क्या होगा, हम हल्के रहेंगे, और हम हल्के होंगे उड़ते रहेंगे, योग अच्छा रहेगा, नहीं तो चिंता होगी क्या होगा, नौकरी छूट गई कैसे खिलाएंगे, बच्चा बीमार है चिंता हो जाएंगे। परंतु बाबा का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं। जब ये भान रहेगा तो बाबा को सब सौंप दें तो हल्के हो जाएंगे। देखो ब्रह्मा बाबा यज्ञ की इतनी जिम्मेवारी थी, इतना ऑपोजिशन था, बाबा सदैव हल्का रहता था। आपको मालूम होगा एक दिन यज्ञ में गेहूं नहीं थे, आटा नहीं था, बाबा ने कोई चिंता नहीं दिखाई, कहा वेट करो, पोस्टमैन को आने दो, और पोस्ट में कुछ पैसा आ गया, गेहूं मंगा लिया, उसको पिसवा लिया, टाइम पर रोटी मिल गई। और पावर्टी के समय 400 बच्चों को खिलाना, बाबा ने कभी चिंता नहीं दिखाई। जो भी गहना था, ग्रामोफोन रिकॉर्ड थे, सब बेच दिए। सवेरे सवेरे क्या करते थे, सबको पहाड़ी पर ले जाते थे, और पहाड़ों पर जो भी ब्लैकबेरी मिलती थी सब तोड़ के खा के पेट भर लेते थे। और बेगरी पार्ट में सिर्फ छाछ और डोडा भी खिलाया, खुद भी खाया। तो तो जिनको पक्का विश्वास था बाबा के ऊपर, वो तो कहा बाबा जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जो करें कहेंगे, आपका डर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यज्ञ नहीं छोड़ा, पर जिनको पूरा विश्वास नहीं था चले गए। दादी प्रकाशमणि, उनके ऊपर तो और भी ज्यादा जिम्मेवारी थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के समय तो 125 सेंटर थे और दादी के टाइम 125 देशों में सेवा केंद्र और लाखों ब्राह्मण थे। पर दादी हमेशा हल्के रहती थी, चिंता नहीं। आप जब भी देखो हर्षित रहती थी और पथारी में जाती थी, 2 मिनट में सो जाती थी, क्योंकि जो चिंता वाले होते हैं ना वो पथारी में जाकर जल्दी सोते नहीं, इधर उधर सोचते रहते हैं और उनको टाइम लगता है नींद आने में। तो प्रकाशमणि दादी को हमने कहा कि दादी आपको चिंता नहीं? नहीं, बाबा का कार्य है, मैं तो निमित्त हूं, कराने वाला वो है, मुझे कोई चिंता नहीं। तो इसी रीत से निमित्त भाव रखने से आप देखेंगे आप हल्के रहेंगे और उड़ते रहेंगे और उड़ाते रहेंगे, जो उड़ते रहते हैं औरों को भी उड़ाते रहेंगे। अभी दूसरा है निर्माण। निर्माण अर्थात निरहंकारी। तो बाबा हमें निर्माण बनाते हैं। बाबा खुद कितना निर्माण था, ब्रह्मा बाबा ज्ञान के पहले जो ड्रेस था वही ड्रेस पहनता था, धोती और कभी मैंपन नहीं। मुरली में भी कहेंगे बाबा बोल रहा है, बाबा को याद करो, कभी अपना फोटो खींचने नहीं दिया और बाबा से कभी बच्चों को देखो, साधु संत होते थे ना तो सब जाके उसको पांव पड़ते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उसके पांव धुलाई करके पानी पीते हैं। बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, बच्चों को नहीं कहते हैं कि आप नमस्ते करो। हम नमस्ते कहते हैं परंतु बाबा नहीं कहते हैं कि नमस्ते करो। तो ब्रह्मा बाबा जिस गद्दी पर बैठकर क्लास कराते थे उसी गद्दी पर बच्चे भी बैठकर क्लास कराते थे। जबकि आप देखेंगे शंकराचार्य वो कितनी चांदी की गद्दी सिवाय कहाँ नहीं बैठते थे। वो कार में जाएंगे पहले उसके चांदी की गद्दी पर जाएंगे, सिंहासन, जहां भी भाषण करने जाएंगे पहले उसका चांदी का गद्दी आसन जाएगा और कितनी कार साथ में होंगी, कितने फॉलोअर्स साथ में होंगे, सभी को दक्षिणा देनी होंगी। और ब्रह्मा बाबा जब भी आते थे ना, मधुबन से दिल्ली बॉम्बे जहाँ भी जाते थे, स्टेशन पर कहते थे कोई क्राउड ना हो, मैं गुप्त हूँ, गुप्त रहना है। और सेंटर पर भी आकर कहेंगे गुलदस्ता बुके नहीं, ये सब देवताओं के लायक है, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मुझे फूलों का सम्मान नहीं चाहिए, न कभी फोटो लेने दिया न हार तोड़ा। तो ब्रह्मा बाबा निर्माण रहा, हमें भी निर्माण रहना है। तो जो निर्माण है वो क्या है, सबको रिस्पेक्ट देगा, सबको मान देगा, चाहे छोटे हैं बड़े हैं इक्वल है, सबको मान देगा। जिसके अंदर ईगो है, अहंकार है, वो क्या है, मैं करेगा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऊंच कुल का हूँ, मेरी ये पोजीशन है, मेरे पास इतना धन है, मेरा इतना वैभव है, बोलेगा भी और शो करेगा, अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमेगा, इतने नौकर चाकर रखेगा। तो बाबा तो सिंपल, उस समय मैं समझती हूँ मधुबन में एक भी गाड़ी नहीं थी, हम लोग हैं नीचे आबू रोड से बस में आते थे, बस स्टैंड में उतर करके फिर बैलगाड़ी में सामान लाते थे और हम पैदल आ जाते थे। तो बाबा निरंकारी, तो सबको मान देना है निर्माण होके, निरंकारी सच्चाई सफाई से चलते हैं, उदार दिल होते हैं, और कोई भी उनकी महिमा करेंगे कहेंगे बाबा 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 ने हमें ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ योगी हूँ अच्छा भाषण करने वाला हूँ या कोई नहीं, बाबा ने हमें ऐसा बनाया है। और निर्माण होगा वो क्या है, सबको चांस देगा, जिसको ईगो होगा वो क्या कहेगा, मैं ही सब कुछ करेगा, मेरे जैसा भाषण कोई और कोई थोड़ी कर सकता है, मैं ही स्टेज पर आऊंगा। निर्माण सबको चांस देगा, निर्माण है वो सबका विचार सुनेगा, क्योंकि आजकल तो टीम बैठकर सोचेंगे प्लान करेंगे, तो जो निर्माण होगा वो सबकी बातें सुनेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और फिर फाइनल करेगा। तो बालक और मालिक का बैलेंस होगा, बालक बन के सुनेगा, मालिक बन के फैसला करेगा। और निर्माण है व्यक्ति वो सबके अंदर के भाव को सुनेगा, देखेगा, और समझेगा। औरों को उत्साहित करेगा कि आप कर सकते हो। मुझे याद है दादी जानकी अपना अनुभव सुनाती थी कि एक बारी उसको बाबा ने कहा जाओ हिंदू परिषद की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें जाकर भाषण करो। दादी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था तो मम्मा के पास गए कि बाबा हमको भेज रहे हैं परंतु मैं तो अपने को इतना लायक नहीं समझती हूँ। मम्मा ने कहा नहीं बाबा तुम्हारी विशेषता जानते हैं, तुम भाषण कर सकती हो जाओ। तो मम्मा ने उनको प्रोत्साहित किया और दादी ने जाकर भाषण किया। अच्छा तो औरों को प्रोत्साहित करेगा और औरों में बल भरेगा निर्माण। जो ईगो वाला है वो दूसरों का अपमान करेगा, तुम कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, ऐसे बोलता रहेगा। तो इसलिए जैसे कहते हैं कि जो वृक्ष में ज्यादा फल होते हैं तो डालियां झुकती हैं। इसी रीति से जो गुणवान लोग हैं वो क्या है, झुकते हैं, निर्माण होते हैं, झुकते हैं। जो अभिमानी होते हैं ऐसे सीधा चलते हैं, वो नीचे कभी नहीं करते हैं अपनी गर्दन, सीधा चलते हैं। तो इसी रीति से हमें भी क्या करना है कि अभिमान का अंश न हो, किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, उनका अपमान नहीं करना है और मैं मेरा ये नहीं करना है और अपना बॉसीपना नहीं, मैं कहता हूँ वो ही करना है, मैं ही ठीक हूँ, ये नहीं। तो ये है निर्माण। और तीसरा है स्वच्छ निर्मल। यूजुअली निर्मल शब्द पानी के लिए कहते हैं, ये पानी स्वच्छ है तो कहते हैं निर्मल है, परंतु वास्तव में आत्मा स्वच्छ है, कीचड़ा नहीं है। कल ही बाबा कहते थे ये पुराने स्वभाव संस्कार की गठरी भी हमारी पास ना हो, मतलब संपूर्ण पवित्रता हो, पुराना स्वभाव संस्कार ना हो। तो इसलिए हमको देखना है कि हमें पूरा स्वच्छ बनना है, निर्मल, और कोई भी सूक्ष्म भी विकारों का अंश ना हो। जिनमें देहभान होता है वो क्या करता है, वो बाह्यमुखी है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, अंतर्मुखी बनो। और जिनको देवभान है ना, वो अपने तरफ सबका अटेंशन खिंचवाता है, बोलना चलना पहनना ऐसा होता है जो सब उसको देखते रहे। लेटेस्ट फैशन का कपड़ा पहनेगा और देवभान वाले क्या है, घड़ी घड़ी अपना चेहरा आईने में देखता रहेगा कि सब बाल ठीक है, चेहरा ठीक है, कपड़े ठीक है, बैठते समय भी कपड़ा जरा भी क्रीज न हो, और सब उसको मान दे, ये चाहते हैं कि सब उसको मान दे, उसने कुछ काम किया है उसको उसका सराहना करे। और अपने शरीर पर, कपड़ों पर, खाने पीने और साधन वैभव पर खर्चा करेंगे ताकि सब देखें कि इनके पास तो खूब है। तो व्यर्थ खर्च करते हैं टाइम मनी एनर्जी का, और कोई तो है वो शर्मिंदा स्वभाव है, उनको कहो जाके कोर्स कराओ तो उनको लज्जाती है, उनको कहो भाषण करो तो लज्जाती है, उनको कहो VIP के मिलने जाओ तो नहीं अच्छा लगता है, उनको चिंता होती है, भविष्य की चिंता। और हंसना बोलना मजाक करना इत्यादि ये भी देहाभिमान की निशानी है। और गपसप, जरमुई जंगमुई, उसमें भी वो होशियार होते हैं। और आजकल तो देखो वेट कम करने के लिए कितनी एडवर्टाइज आती है, क्या दवाई खाओ, क्या डाइट खाओ, हाँ, और कहेंगे कि आप इतने तक की ऑपरेशन करते हैं, पेट से चर्बी निकाल देते हैं ऑपरेशन। और कोई कोई तो अपना चेहरा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, नाक कैसा हो, आंखें कैसी हो, उसका स्माइल कैसे हो, उसके लिए भी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। कईयों को चाइनीज आय अच्छी लगती है, हम चाइनीज लग, तो अनेक प्रकार की सर्जरी करते हैं, कितना खर्च करते हैं, और कई बार तो 3-4 ऑपरेशन करना पड़ता है उन्हों को, तब उनको जो चाहिए तब जैसा होता है। तो इसलिए हमको देखना है, बाबा तो कहते हैं देवभान न हो, पर देवभान के जो सूक्ष्म ये है निशानी, वो हमें जाननी है, और देहभान को छोड़ना है। और सबसे बड़ा विकार है काम विकार। काम विकार बाह्य से तो हम देखते हैं, ब्राह्मण बने हैं तो विकार में नहीं जाते, परंतु मनसा वाचा भी ना हो, स्वप्न में भी ना हो। क्या होता है कि कोई कोई तो है प्रभावित हो जाते हैं। देह पर, वैभव पर, वस्तु पर प्रभावित, बहुत अच्छा है। और नेचुरली कहेंगे मुझे होना चाहिए। आजकल तो कलर टीवी है, बड़े स्क्रीन है, मोटर बाइक है, टेलीफोन है, सब देखकर वाह। या तो कोई व्यक्ति ने भाषण किया, वाह बहुत अच्छा भाषण किया। कोई योगी अच्छा योग कराता है, अच्छा अनुभव होता है, कहेंगे हाँ मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो क्या है, बाबा का ज्ञान है, बाबा अनुभव कराता है, ये भूल जाते हैं और वो व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। और आकर्षण, चीज से आकर्षण है, चाहना होती है कि ये अच्छी है मेरे पास हो। फैमिलियरिटी, एक दो के साथ फ्रेंडशिप ऐसी है सारा दिन एक दो से बातचीत करते रहेंगे। बाबा से राय लेने से बजाय उस व्यक्ति से राय लेंगे, अपना सुख दुख की बातें उसको सुनाएंगे, तो ये फैमिलियरिटी भी ना हो और नाम रूप का प्यार ना हो। जिसका नाम रूप का प्यार है वो क्या करेंगे, सारा दिन उसके नाम की माला जपेंगे। भक्ति में राम नाम राम नाम राम करते थे, अभी मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा बच्चा ऐसा है, तो सारा दिन उसकी महिमा करते रहेंगे। तो नाम जपते रहेंगे, नेचुरली रूप भी सामने आएगा जिसका नाम जपते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये भी ना हो सूक्ष्म में। बाबा बाबा करते रहो, ना कि दूसरे का नाम रूप के याद करो। फिर है मुंह, देखो सबके साथ प्यार होना चाहिए, चाहे अड़ोसी है पड़ोसी है, चाहे अपनी जात वाले है, चाहे दूसरी कुल के हैं, चाहे देश के हैं, चाहे विदेश के, अपने स्टेट के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, हमारा प्यार सबके लिए हो। और प्यार के साथ साथ न्यारा होना चाहिए, किसी के ऊपर आधारित नहीं रहना है, क्योंकि मोह है उसमें देखेंगे कि एक दो के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे माँ बाप है, छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा तो माँ के ऊपर डिपेंडेंट होगा, पर माँ भी पीछे क्या है, सारी जिंदगी मेरा बच्चा मेरा बच्चा। और फिर मैं जो कहूँ ऐसे करो, बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है वो करना है, तो वो बच्चों को कंट्रोल करती है, अपना अधिकार जमाती है कि तुम मेरे हो, मैं जो कहती हूँ वो करो। और मुंह होता है तो क्या करते हैं, उसके लिए विशेष ध्यान देती है, फेवरेटिज्म के, समझो आज खाना पकाया है, उसका जिसमें मुंह होगा उसके लिए पहले खाना निकाल के रख देंगे कि उसके लिए मुझे खाना रखना है। या सेंटर पर क्या करेंगे, मुर्गी की थोड़ी कॉपी आती है ना, तो पहले उस व्यक्ति के लिए खास नई मुरली दे लक रख देती है, तो उसकी पक्षपात करते हैं और मेरापन है। और क्या है कि जिसमें मोह है उससे यदि अलग होते हैं, चाहे बच्चा है अमेरिका जाता है, अब जाता है पढ़ने के लिए कमाई करने के लिए, पर माँ बाप का मोह होता है तो क्या है, आप एयरपोर्ट पर देखेंगे ना, वो बच्चा जाता है कितना रोती है माँ। और एक माँ थी ना, कहती थी मेरे बच्चे को जलेबी बहुत अच्छी लगती थी, अब मैं तो जलेबी नहीं खा सकती हूँ, उसको बेचारे को कौन जलेबी खिलाता होगा, तो खुद भी नहीं खाती। तो ये होता है कि एक तो अलग होने का दुख है, मरने की तो बात छोड़ो, मरने के बाद तो सालों तक रोते रहेंगे। हमारे पास मॉरिशस में एक माता थी, उसका पति 11 साल पहले गुजर गया था, परंतु उसने उसके कपड़े रख दिए थे, तो जब भी उसकी कबट खोलती थी रोना शुरू कर देती थी। इसलिए क्या करते हैं हिंदुस्तान में, तो जो मर गया ना उसकी सब चीज ब्राह्मणों को दे देते हैं कि न चीज रहे ना उसको देखकर रोना आवे। फिर है लोभ, लोभी है ना, उसको क्या है, कभी संतुष्ट नहीं, उसके पास कितना भी है तो भी समझेंगे और चाहिए, तो और की चाहना में और की कमाई में वो मस्त रहता है और स्वार्थी रहेगा। और लोभी है मनहूस रहेगा, कमाएंगा परंतु जब दान देने की बात आएंगी ना, तो 50 है 500 दे दिया चलो। जैसे बाप परसों मुरली में कहा ना कि गरीब है वो एक ईंट भी एक रुपया भी देगा वो शाहूकार के लाखों बराबर। तो गरीब अच्छा पुण्य आत्मा बन जाता है और उसका अच्छा पद मिलेगा, पर जो शाहूकार है उसको सरेंडर होने में तकलीफ होती है, दान देने में भी सोचते हैं। और लोभी है वो क्या करता है, जमा करता रहता है। आप बूढ़े लोगों को देखेंगे ना, उसका कबट पुराने माल से बहुत भरपूर होगा, नया भी खरीदते रहेंगे पर पुराना नहीं छोड़ेंगे। और लोभ पैसे का हो सकता है, वस्त्र का, अलंकार का, खाने पीने का, अच्छा लगता है, इच्छा होती है। और अच्छा खाना है तो डबल खा लेंगे, अच्छा नहीं लगता है कहेंगे आज तो हमको भूख नहीं है करके छोड़ देंगे। पर अच्छा खाना है तो खाने के बाद भी ऊपर से खा लेंगे। फिर आता है क्रोध, वो नंबर दो है, क्रोध नंबर दो है, काम नंबर वन, क्रोध नंबर दो। तो क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप है चिड़चिड़ापन या फोर्सफुल बोलना। क्रोधी है उसमें सहनशीलता कम है, धीरज कम है। मैंने कहा था ना क्यों नहीं किया है, इतना टाइम हो गया। और क्रोधी है वो आर्ग्यू करता रहता है। और जो उन्होंने कहा है नहीं होता है तो दिल शिकस्त हो जाता है। और कोई तो ऐसे होते हैं क्रोधी, जब सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो क्या करेंगे, वो यहाँ से आते हैं वो वहाँ से चले जाएंगे, कि सामने आएंगे तो ओम शांति कहना पड़ेगा, नमस्ते करना पड़ेगा, इसलिए दूर भाग जाएंगे। और कई बार ऐसे भी क्रोधी होते हैं कि सहयोग नहीं देंगे, मैं कुछ नहीं जानता, तो जो करना है करो, ऐसे सहयोग नहीं देंगे। उसके बाद आता है अलबेलापन। जो अलबेले होते हैं ना वो ठीक अपने को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, उसको काम दो तो बहाने बजाएंगे कि मैं चाहता तो था करने परंतु ये कारण है, इस कारण मैं नहीं कर पाया। और मैंने सोचा ये भाई अभी आएगा वो कर लेगा, तो भूल गया मैं, बहाने बता गए मैं भूल गया। और जो अलबेले है ना वो फालतू समय शक्ति धन घमाएंगे, क्योंकि केयरफुल नहीं है, भूल जाते हैं, जहां तहां चीज छोड़ देते हैं, तो नेचुरली है कि उसका समय शक्ति धन व्यर्थ जाता है। और कई है कहेंगे मुझे क्या पड़िए, उसको दुख हुआ तो दुख हुआ, मुझे तो जो मन में आया मैंने बोल दिया, ऐसे करके दूसरे के फीलिंग को देखते नहीं। तो बाबा कहते हैं अपना समय शक्ति बोल धन सब संभालो, व्यर्थ गवाएंगे तो समर्थ नहीं बनेंगे। फिर है आलस्य, आलसी है माना उमंग उत्साह नहीं है। वो जहां तहां बैठा रहेगा तो उठेगा नहीं और बहाना बताएगा मैं थका हुआ हूं। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सौंप सकते हैं, क्यों? ये वो कभी करेगा कभी नहीं करेगा, कभी ऐसे ही बैठ जाएगा। तो उनको आराम पसंद, वो लोग कहेंगे कि वो आराम पसंद, आराम करेंगे समझेंगे कोई ना कोई कर लेगा, किचरा पड़ा है समझेंगे कोई ना कोई देखेगा तो कर लेगा। फिर है ईर्ष्या, तो जिनमें स्वमान की कमी है उनको दूसरों की विशेषता को देखकर ईर्ष्या आएंगे, वो अपने को औरों के साथ कंपेयर करेगा कि हाँ ये तो ऐसा है ना, तो कंपेयर करेगा और कंपटीशन होंगे उसकी दूसरों के साथ, तो वो अपने को असुरक्षित समझेगा कि दूसरे को तो सम्मान मिलता है, सब चांस मिलता है, मुझे नहीं मिलता है, मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो उसको दुख होता है। और दसवां विकार है वैर भाव, वैर भाव घृणा भाव आदि आदि। तो जब वैर भाव होता है ना, तो या तो शब्दों से या तो कर्म से हिंसा करते हैं, मारते हैं पीटते हैं। इंडिया में तो ऐसे है ना, एक्सीडेंट हुआ पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेंगे, उसी समय जिसने एक्सीडेंट किया उसको मारपीट करके खत्म कर देंगे, इतना गुस्सा और वैर भाव होता है। और उसके लिए उल्टी सुल्टी बातें करेंगे कि ये तो ऐसा है, इसने तो ये किया, इसने तो वो किया, ये ऐसा है, आप समझते हो अच्छा है परंतु नहीं, ऐसा नहीं। तो बदला करने की भावना होंगे और कायदा अपने हाथ में ले लेंगे। और समझो वो क्या करेंगे, एक दो के प्रति, किसी के प्रति अच्छा भाव रखेंगे, किसी के प्रति बुरा भाव रखेंगे। जैसे आजकल क्या है कि गोरे काले का भेदभाव होता है, तो कालों को अच्छा नहीं समझते हैं, तो उसके प्रति वैर भाव हो जाता है, उनको ठीक रीति से वो नहीं करते हैं। तो इसी रीति से देखा गया है कि बाबा तो हम बच्चों को पूर्ण पवित्र रहना ये बताते हैं कि हमारे में कोई भी विकार का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि ये एक दाग हो जाता है हमारे में, विकार दाग हो जाता है। पवित्रता है तो वो क्या हो जाता है, किरणें, आत्मा से किरण भाव निकलता है, चमक निकलती है। जितनी पवित्रता वो आत्मा चमकती है, उसका चेहरा चमकता है। तो हमें अपने आप को निर्विकारी बनाना है, देखना है कि कोई भी विकार मात्र ना रहे। तो हम जितनी हमारे में रूहानियत होंगे, सादगी होंगी, ऑनेस्टी होंगी, सादगी होंगी और रूहानी दृष्टि वृत्ति और हरेक के प्रति शुभ भावना शुभकामना हो, तो प्योरिटी, मानव बाबा कहते हैं रियलिटी और रॉयल्टी हो। तो ये देखना है कि हम बाबा के बच्चे, बाबा जसमान निर्मल निर्माण हो और सदैव अपने आप को निमित्त समझ कर चले, मैं और मेरापन बिल्कुल हमारे में ना हो। ओम शांति।